नमस्कार, आकाशवाणी समाचार से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्राम गुलाम के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों के बीच 4 समझौतों पर हस्ताक्षर। गृहमंत्री अमित शाह ने देश के 5 हवाई अड्डों पर फास्टट्रैक इमिग्रेशन सुविधा का शुभारंभ किया। रेलवे कश्मीर घाटी के बड़गाम से दिल्ली के आदर्श नगर स्टेशन तक शनिवार से दैनिक पार्सल रेलगाड़ी शुरू करेगा। नेपाल के राष्ट्रपति और सेना नए अंतरिम नेता का फैसला करने के लिए युवा प्रदर्शनकारियों के साथ बातचीत फिर से शुरू करेंगे। और जैस्मिन लैम्बोरिया, नुपुर श्योराण और पूजा रानी ने लिवरपूल में विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारत के लिए कम से कम 3 कांस्य पदक सुनिश्चित किए। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम ने आज वाराणसी में द्विपक्षीय बातचीत की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों देशों के बीच 4 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए।
दोनों नेताओं के बीच बातचीत में सहयोग के सभी क्षेत्र शामिल रहे। विज्ञान और तकनीक, ओशनोग्राफी, प्रशासनिक प्रशिक्षण और टेलीमेट्री में 4 MOUs दोनों देशों के बीच आदान प्रदान किए गए। शक्ति क्षेत्र, भारतीय अनुदान सहायता से छोटे विकास परियोजनाएं और हाइड्रोग्राफी से जुड़ी 3 अन्य दस्तावेज भी दोनों देशों ने साझा किए। बातचीत में सिविलाइजेशनल टाइज, आध्यात्मिक संबंध और पीपल टू पीपल टाइज को फिर से प्रगाढ़ किया गया। आलोक राय, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी।
संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के बीच प्रगाढ़ होते संबंधों की पुष्टि करते हुए कहा कि भारत और मॉरिशस 2 राष्ट्र हैं, लेकिन हमारे सपने एक हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और मॉरिशस साझेदारी नहीं, एक परिवार भी हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा से मॉरिशस में उपनिवेशवाद के उन्मूलन और उसकी संप्रभुता को पूर्ण मान्यता देने का समर्थन किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के बाहर पहला जन औषधि केंद्र मॉरिशस में स्थापित किया गया है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा द्विपक्षीय साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि IIT मद्रास और भारतीय वृक्षारोपण प्रबंधन संस्थान ने मॉरिशस विश्वविद्यालय के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। मॉरिशस के प्रधानमंत्री 9 से 16 सितंबर तक भारत की यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री आज शाम उत्तराखंड के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का विमान से सर्वेक्षण करेंगे। बाद में श्री मोदी उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियों का निरीक्षण किया।
प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल शाम जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचकर तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गौरतलब है कि इस मॉनसून सीजन में उत्तराखंड के कई जिलों, विशेषकर उत्तरकाशी, चमोली, पौड़ी, बागेश्वर और टेहरी में भारी बारिश, भूस्खलन और बाढ़ से स्थानीय जनजीवन प्रभावित हुआ है। उम्मीद जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री के दौरे से राहत और पुनर्निर्माण कार्यों को नई दिशा और गति मिलेगी। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
गृहमंत्री अमित शाह ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लखनऊ, तिरुवनंतपुरम, त्रिची, कालीकट और अमृतसर हवाई अड्डों पर फास्टट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि फास्टट्रैक इमिग्रेशन प्रोग्राम एक विश्वसनीय यात्री कार्यक्रम है जो इमिग्रेशन को सरल, तीव्र और बाधा रहित बनाता है।
कुल 13 एयरपोर्ट का एक साथ आज कार्यवाही शुरू हो रही है। सुनिश्चित रूप से बड़ा फायदा हुआ है। कोई लंबी लाइन नहीं, कोई मैनुअल चेकिंग नहीं, कोई विलंब नहीं, सिर्फ 30 सेकंड में इमिग्रेशन क्लियरेंस मिलता है। अब तक लगभग 3 लाख यात्रियों ने इस पोर्टल पर पंजीकरण किया है।
श्री शाह ने बताया कि पिछले 11 वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय यातायात में काफी वृद्धि हुई है।
2014 में भारतीय यात्री विदेश जाने वाले 3,54,00,000 थे और 24 में वो 6,12,00,000 हुए। 73% की वृद्धि हुई है। और विदेशी यात्री जो भारत आते थे वो 1,53,00,000 थे, उसकी जगह 24 में लगभग 2 करोड़ यात्री आए हैं। इसमें भी 31% की वृद्धि हुई है।
समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि रेलवे शनिवार से कश्मीर घाटी के बड़गाम से दिल्ली के आदर्श नगर स्टेशन तक एक दैनिक मालगाड़ी शुरू कर रहा है। ये रेलगाड़ी फल और हस्तशिल्प विक्रेताओं को देश में अपने उत्पाद प्रदर्शित करने का एक विकल्प प्रदान करेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि जम्मू श्रीनगर लाइन शुरू होने से कश्मीर घाटी से संपर्क अब और बेहतर हो गया है। उन्होंने बताया कि बड़गाम से दिल्ली के लिए सेब से लदी दो पार्सल वैन आज से चलाई जा रही है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंधों को बेहतर बनाने के लिए बातचीत सकारात्मक माहौल में आगे बढ़ रही है। पटना में आज संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कल स्वीकृत सड़क और रेल अवसंरचना परियोजनाओं से राज्य के विकास को गति मिलेगी।
खामा मुंगेर चार लेन का हाईवे 4,500 करोड़ रुपए की लागत से बनने जा रहा है और साथ ही साथ भागलपुर दुमका रामपुर हाट की जो रेल लाइन है उसको डबलिंग करना 3,170 करोड़ रुपए की लागत से दो बड़े सौगात बिहार के जनता के लिए।
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन बिजली उत्पादन के अंतर्गत 250 गीगावाट की क्षमता हासिल कर ली है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य है। नई दिल्ली में आज नवीकरणीय ऊर्जा पर राज्य समीक्षा बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री जोशी ने कहा कि सरकार ने अपने उपयोगिता आधारित मॉडल के तहत 20 लाख परिवारों को स्थिरता के साथ मुफ्त बिजली प्रदान की है।
कुछ राज्य बहुत विश्वास के साथ यूटिलिटी लेड मॉडल का डिमांड हमारे पास भेजा था, हमने अप्रूवल किया है। बाय दैट नाउ 20 लाख इज कंप्लीटेड एंड वेरी शॉर्टली वी विल बी एडिंग अनदर 30 लाख। Means so much of households will get free electricity with sustainability. Overall, our target is 1 crore households.
सरकार ने भारतीय नागरिकों से रूस की सेना में शामिल होने के प्रस्ताव से दूर रहने को कहा है। सरकार ने इस प्रस्ताव को खतरों से भरा बताया है। संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ऐसी खबरें हैं कि भारतीय नागरिकों को हाल ही में रूस की सेना में भर्ती किया गया है। उन्होंने बताया कि दिल्ली और मॉस्को में रूस के अधिकारियों के साथ इस मुद्दे को उठाया गया है और भर्तियां बंद करने तथा भारतीय नागरिकों को रिहा करने का अनुरोध किया गया है। श्री जायसवाल ने आश्वस्त किया कि सरकार प्रभावित परिवारों के संपर्क में है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए उसके बयानों को झूठा और बेबुनियाद बताया है। जिनेवा में परिषद के 60वें सत्र के दौरान भारत के स्थायी मिशन के सलाहकार क्षितिज त्यागी ने पाकिस्तान पर आतंकवाद को प्रायोजित करने और दुष्प्रचार के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया।
Lest we forget the carnage of Pahalgam, where Pakistan-sponsored terrorists turned a meadow of joy into a killing field in April this year. Lest we forget Pulwama, Uri, Pathankot, Mumbai. The list is endless. The international community recognizes this charade for what it is. The world will not forget. India will not forget.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किला के प्राचीर से दीपावली तक अगली पीढ़ी के वस्तु और सेवा कर जीएसटी सुधारों की घोषणा की थी। 3 सितंबर को जीएसटी परिषद के आम आदमी पर ध्यान केंद्रित करते हुए दरों को युक्तिसंगत बनाने को स्वीकृति दी गई। आज हम ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए किए गए सुधारों की बात कर रहे हैं।
इन सुधारों के अंतर्गत 350 सीसी से कम इंजन क्षमता वाले दो पहिया वाहनों पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। वहीं 1200 सीसी से कम की पेट्रोल और 1500 सीसी से कम की डीजल कार जिनकी लंबाई 4 मीटर से अधिक न हो उन पर जीएसटी की दर को 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। ऑटोमोबाइल व्यापारी रंजीत मिश्रा ने नए जीएसटी सुधारों को दिवाली का तोहफा बताया है।
जिस तरीके से उन्होंने जीएसटी 28% से ऑटोमोबाइल पे 18% लेके आया, 10% अराउंड बहुत मायने रखता है और उसके अलावा 35 ऐसी वस्तुएं हैं जिसपे जीएसटी नील कर दिया है।
ऑटोमोबाइल उद्योग अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने कई राज्यों से 5 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। विशेष शाखा के अपर पुलिस आयुक्त प्रमोद सिंह कुशवाहा ने नई दिल्ली में कहा कि मामले का मुख्य आरोपी अशहर दानिश रांची निवासी है जो पाकिस्तान के अपने सहयोगी के संपर्क में था।
पैन इंडिया टेरर मॉड्यूल बस्ट किया है अंडर द एजेस ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसीज और इन कोऑर्डिनेशन विद स्टेट पुलिस एंड एटीएस ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका, झारखंड, मध्य प्रदेश एंड तेलंगाना। इसमें 11 लोग डिटेन किए थे, पर फाइनली अरेस्ट हमने 5 लोगों को किया है। इनका प्लान था कि एक जगह एक्वायर करेंगे और उसके बाद में एक टीम तैयार करेंगे, जिसको ये कह रहे थे कि ये हमारा लश्कर होगा खिलाफत के लिए, गजवा हिंद या जिहाद करेंगे।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। नेपाल में जारी राजनीतिक हलचल के बीच राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल, नेपाली सेना प्रमुख अशोक राज सिगडेल और युवा प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों के बीच आज अंतरिम सरकार का नेतृत्व तय करने के लिए बातचीत होगी। सूत्रों के अनुसार युवा प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्के को अंतरिम प्रधानमंत्री पद के लिए अपना उम्मीदवार चुना है।
सोमवार को शुरू हुए जनजी प्रदर्शन की हिंसा में आज तक में कुल मृत्यु बढ़कर 30 हो गई है और कुल 1100 से ज्यादा लोगों ने नेपाल के विभिन्न अस्पतालों में अपना इलाज कराया है। सरकारी भवनों को प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी, राजनीतिक नेताओं और मंत्रियों को पीटा गया, उनके घरों में तोड़फोड़ कर आग लगा दी गई। प्राइवेट प्रॉपर्टीज और बिजनेस जैसे हिल्टन होटल, हयात होटल, एनसेल ऑफिस, भाटभटेनी सुपरमार्केट्स को भी नष्ट किया गया। स्थिति सुधारने के लिए नेपाली आर्मी ने शुक्रवार की सुबह 6 बजे तक काठमांडू घाटी में कर्फ्यू लगा दी है। वहीं आज जेनजी प्रतिनिधियों, राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और नेपाली सेना के प्रमुख अशोक राज सिगदेल की मुलाकात के बाद राष्ट्रपति यह निर्णय लेंगे कि नेपाल की अंतरिम सरकार की अगुवाई कौन करेगा। श्वेता सिंह, आकाशवाणी समाचार, काठमांडू।
नेपाल में काठमांडू, ललितपुर और भक्तपुर जिलों में निषेधाज्ञा और कर्फ्यू 12 सितंबर सुबह 6 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। नेपाल की सेना ने बताया है कि आवश्यक सेवा वाले वाहन और संस्थानों पर प्रतिबंध लागू नहीं होगा। दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आज सुबह 6 से 9 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई, शाम 5 से 7 बजे तक भी कर्फ्यू में राहत दी जाएगी। एयर इंडिया और इंडिगो ने घोषणा की है कि वो नेपाल में हाल ही में हुए घटनाक्रम के कारण फंसे यात्रियों की मदद के लिए दिल्ली से काठमांडू के बीच विशेष उड़ानें चला रही है। एयर इंडिया ने एक बयान में कहा कि नियमित उड़ानें शुरू हो गई हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने कहा है कि विमानन कंपनियों को उचित किराए लेने की सलाह दी गई है। भारत ने इंग्लैंड के लिवरपूल में विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता में 3 पदक पक्के कर लिए हैं। जैस्मिन लंबोरिया, नुपुर श्योराण और पूजा रानी सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। 34 वर्षीय पूजा रानी ने पोलैंड की एमिलिया कोटेरस्का को 3-2 से हराकर 80 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इससे पहले नुपुर ने उज्बेकिस्तान की ओल्टिनोय सोतेम्बा को हराकर 80 से अधिक किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल में जगह बनाई। एशिया कप T20 क्रिकेट के ग्रुप बी मैच में आज बांग्लादेश और हांगकांग आमने सामने होंगे। अबूधाबी में ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों के बीच 4 समझौतों पर हस्ताक्षर। गृहमंत्री अमित शाह ने देश के 5 हवाई अड्डों पर फास्टैग इमिग्रेशन सुविधा का आरंभ किया। रेलवे कश्मीर घाटी के बड़गाम से दिल्ली के आदर्श नगर स्टेशन तक शनिवार से दैनिक पार्सल रेलगाड़ी शुरू करेगा। नेपाल के राष्ट्रपति और सेना नए अंतरिम नेता का फैसला करने के लिए युवा प्रदर्शनकारियों के साथ बातचीत फिर से शुरू करेंगे। नेपाल में अस्थिर हालात के मद्देनजर बिहार के 7 सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।